てみたい。
Om Shanti and good morning. Adarniye Dr. Nirupama Behenji, Adarniye Dr. Pandemani Ji, Adarniye Dr. R.P. Gupta Ji, or Adarniye Suman Behenji. साथ साथ सभा में उपस्थित हमारे सभी टीचर भाइयों और बहनों, आप सभी जीवन में चाहते हैं कि आध्यात्मिकता और वैल्यूज के द्वारा हमारा जीवन समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, किंतु इस सबके द्वारा सबसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हमारी हेल्थ। तो मैं चाहूंगा कि आपको आज हेल्थ के बारे में कि आप सदा हेल्दी और हैप्पी कैसे रह सकें, आप सदा स्वस्थ कैसे रह सकें। तो हमने पिछले लगभग मुझे 19 साल हो गए यहां माउंट आबू आए हुए, और पिछले 19 साल से मैं माउंट आबू में हूं। इससे पहले मैं दिल्ली में, जैसे सुमन बहन ने आपको बताया, दिल्ली से ही मैंने MBBS किया, MD किया, कार्डियोलॉजी में फेलोशिप किया, और उसके बाद एस्कॉर्ट्स में कार्य करते हुए मुझे कुछ ऐसी बातें जीवन में आई, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे कि मैं सभी लोगों को एक नया रास्ता बता सकूं, और वो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर, व्हाट इज थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर? तो आज मैं आपसे वही चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपको पहले आप बताएं, आप सभी हेल्दी रहना चाहते हैं? जो हेल्दी रहना चाहते हैं हाथ उठाएं, एक बार खड़े हो जाए सभी तो अच्छा रहेगा। जो सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, वेरी गुड, वेरी बहुत बहुत अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाओ इसका। अच्छा अच्छा, तो आप सभी बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। तो मैं समझता हूं हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी खुश रहना चाहते हैं। आज अगले लगभग 45 मिनट से एक घंटे के अंदर हम इस बात को समझेंगे कि कैसे हम हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। ना खाली अपने हार्ट को हम स्वस्थ बना सकते हैं, अपनी आर्टरी के ब्लॉकेजेस को हम खोल सकते हैं, किंतु अपने मन को भी हम स्वस्थ और खुश बना सकते हैं, और अपने तन के भी हर कोशिका को हम स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज आपसे इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे। आप ये जो प्रोग्राम है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इसका नाम है थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी माइंड हार्ट एंड बॉडी। ये आज के समय की आवश्यकता है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आप वहां पर ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, अपने मॉनिटर पे आप देख सकते हैं सभी। ये हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू है, जहां पर ये प्रोग्राम शुरू हुआ 1995 में, और ये नीचे डायमंड हाउस जिसमें आप बैठे हुए हैं। आज की जो हेल्थ केयर है ये वन डायमेंशनल है, क्योंकि सिर्फ बॉडी को एड्रेस करती है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं आज इंडिया में या विश्व में, वो सिर्फ बॉडी के बारे ही पढ़ाते हैं। चाहे हम MBBS करें, चाहे हम MD करें, चाहे हम DM करें, FRCP करें, FRCS करें या MCH करें, किसी भी कोर्स में, किसी भी विश्व के किसी भी संस्था में जाएं आप, वहां पर सिर्फ बॉडी की ही टीचिंग होती है। वहां पर ना मन के बारे पढ़ाते हैं, ना बॉडी के बारे पढ़ाते हैं, ना आत्मा के बारे पढ़ाते हैं। जबकि हम जानते हैं कि आज 95% जितनी भी बीमारियां हैं बॉडी की या मन की, वो साइकोसोमेटिक है, अर्थात साइकी मींस माइंड, पहले मन में पैदा होती हैं फिर बॉडी में आती हैं। आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका निर्माण 1945 में हुआ, लगभग 1945 में इसने परिभाषा दी थी, डेफिनेशन की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अर्थात स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आप फिजिकल माना शारीरिक तौर पे स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं, सामाजिक तौर पे स्वस्थ हैं और आध्यात्मिक तौर पे स्वस्थ हैं। खाली आज आपको बीमारी नहीं है, इसको हम स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। अगर हम देखें, अगर इस परिभाषा के हिसाब से देखें, तो आप में से कोई भी स्वस्थ है आज? तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा एक आदर्श परिभाषा है और WHO सेम की तरफ लगा हुआ है और इसी WHO ने 1977 में एक अल्माटा में एक बड़ी मीटिंग बड़ी कॉन्फ्रेंस की जिसमें लगभग 200 देशों के हेल्थ प्लानर्स इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक प्लान बनाया एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया था कि 2000 तक हम सबको स्वस्थ बनाएंगे अगले 23 साल में एटलीस्ट सबके सब सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्थ में जी सकें और उसके बाद बहुत इस पे पैसा खर्च हुआ 2000 पूरा हो गया 2000 पूरा हो चुका नहीं हो चुका है हो चुका है ना उसके बाद 13 साल और बीत चुके हैं क्या हम स्वस्थ सभी स्वस्थ हो गए आप क्या समझते हैं सभी स्वस्थ हो गए नहीं हुए ना अगर हम देखें आज प्रेजेंट स्टेटस क्या है हेल्दी लिविंग का अगर फिजिकल हेल्थ देखें आज हम 2013 की रिपोर्ट है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस ये विश्व की एक रिपोर्ट बनती है WHO बनाता है इसमें हार्ट डिजीज नंबर वन है लगभग 40% लोग हार्ट डिजीज से मरते हैं आज लंग फेफड़ों की बीमारी दो नंबर पे है स्ट्रोक्स पैरालिसिस का अटैक तीसरे नंबर पर है डायरिया जो लूज मोशंस हो जाते हैं चेस्ट इन्फेक्शंस लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना ट्यूबरक्लोसिस सातवें छठे नंबर पर है बच्चे जो एक साल से पहले मर जाते हैं न्यूबॉर्न डेथ फिर सुसाइड्स आज आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं फिर रोड एक्सीडेंट नौवां नंबर है और डायबिटीज दसवां नंबर है डेथ के केस में अगर हम देखें आज अगर किसी भी मेजर शहर में जैसे दिल्ली है चेन्नई है कलकत्ता है मुंबई है अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में सर्वे करके देखा गया कि 100 लोग अगर आप 100 लोगों को ले लें क्रॉस सेक्शन 100 लोगों का ले लें 100 लोगों में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है ये मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूं शरीर की हेल्थ की बात कर रहा हूं 14% लोगों को हार्ट डिजीज है 10% लोगों को डायबिटीज है 40% लोग मोटे हैं मैं चाहूंगा आप में से कितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हाथ उठाएंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हाथ उठाएं ऊंचा हाथ उठाएं नीचे कर लें जिनको डायबिटीज है वो हाथ उठाएं ऊंचा हाथ उठाएं ठीक है नीचे कर लीजिए जो लोग अपने आप को मोटा समझते हैं वो हाथ उठाएं मोटे बहुत हैं देखिए 40% लोग मोटे हैं ओबीस हैं ओवरवेट हैं 10% लोगों को सांस की तकलीफें हैं 25% लोगों को एसिडिटी बनती है एसिडिटी ज्यादा बनती है 100 में से 25 लोग हर चौथे आदमी को एसिड ज्यादा बनता है 20% लोगों को हड्डियों की तकलीफ है घुटने की तकलीफ है या कमर की तकलीफ है गर्दन की तकलीफ हड्डियों में कैल्शियम निकल गया ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली हमारी माताओं बहनों को ज्यादा मात्रा में स्पेशली 45 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज के बाद बहुत ज्यादा बीमारी लगभग 50% बहनों को हड्डियां कमजोर हो जाती हैं स्किन प्रॉब्लम 10% लोगों को है आंखों की और नाक कान गले की प्रॉब्लम 10% लोगों को है कैंसर 5% लोग 100 में से 5 लोगों को है हार्मोन्स की बीमारी थायराइड की बीमारी लगभग 100 में से 5 लोगों को होती है कोई ना कोई इन्फेक्शन 10% लोगों को होता है हेडेक सिरदर्द 10% लोगों को हेडेक होती है एवरेज लगभग अगर आप ये अंदाजा लगाएं मैंने 15-20 बीमारी आपको बताई है तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं मतलब हर आदमी को कम से कम 2 बीमारी है एवरेज आप अपने आप को देख लीजिए अपने अंदर जिसके पास 2 बीमारी ना हो मुझे बताना आप अपने अंदर देखना तो आपको 2-2 बीमारी सबको मिल जाएंगी फ्री में है सबके पास जिसके पास नहीं है वो हाथ उठाओ 1, 2, 3, 4 लोगों ने हाथ उठाया पर वो भी ध्यान से देखा नहीं उन्होंने ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा 10 में हर एक को 2 बीमारी मिली हुई है फ्री तो आज की फिजिकल हेल्थ ऐसी है अगर मेंटल हेल्थ देखें तो कैसी है मानसिक स्वास्थ्य देखो कैसा है डिप्रेशन आज 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में है मेजर डिप्रेशन मेजर माना जिसके लिए दवाई खानी पड़ती है उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं डॉक्टर्स भी हैं बिजनेसमैन भी हैं इंजीनियर्स भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं फिल्म स्टार्स भी हैं तो लगभग और ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है स्पेशली यंग लोगों में बहुत बढ़ती जा रही है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में बहुत ही डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है इंसोमनिया नींद ना आना 100 में से 10 लोगों को नींद नहीं आती है आज एंजाइटी चिंता सभी को है ऐसा कोई व्यक्ति जिसको चिंता ना हो हाथ उठाओ जिसको कोई चिंता नहीं है, सचमुच सोच के बताना है, कोई चिंता नहीं, जिसको कभी भी कोई चिंता नहीं होती है। गुस्सा, गुस्सा गुस्सा करना कोई नहीं चाहता, लेकिन गुस्सा करते सभी हैं। और जबकि एक बार गुस्सा करने से 3 दिन तक आपके दिमाग पर, हार्ट पर, पेट पर, खाने की खाना पचाने पर और किडनी पर नुकसान होता है 3 दिन तक। ईगो, अहम भाव, अहंकार, मैंपन सबके अंदर है। अटैचमेंट, मोह सबके अंदर है। आलस्य, डर, डर जो है, डर एक ऐसी बीमारी है। आपको पता है बीमारी शब्द कहां से आया? बी माना डर और मारी माना बने रहना। जिसके अंदर डर है वो बीमार है ही है। इसलिए आपने सुना होगा शोले फिल्म में डायलॉग था ना एक गब्बर सिंह का, याद है सभी को? कौन सा डायलॉग था? जो डर गया समझो मर गया। तो डर एक बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर सिनिसिज्म, दूसरों में दोष निकालने की आदत। ऐसे लोगों को जो दूसरों में दोष निकालते हैं, उनके हार्ट की आर्टरीज शुरू में ही ब्लॉक हो जाती हैं। हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर, जो लोग अपने मन में बदलने की भावना रखते हैं, ये एक ऐसा पॉइजनस बिहेवियर है जिनकी आर्टरीज लंबे लंबे ब्लॉक्स हो जाते हैं, जिनकी एंजियोप्लास्टी बाईपास भी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आज ही कहता हूं आपको, अगर किसी के प्रति आपके मन में बदलने की भावना है, हॉस्टाइल नेचर आपकी है, तो उनको माफ कर दीजिए, अपने आप को भी माफ कर दीजिए, तो आपके हार्ट की आर्टरीज कभी ब्लॉक नहीं होंगी। और एक बहुत खतरनाक बिहेवियर जिससे सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, वो है टाइप ए बिहेवियर। टाइप ए माना हर समय जल्दी में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, जैसे मैं कहूं ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्शन का प्रेशर, कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, एक समय बहुत सारे काम करना, खाना भी खा रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, टेलीफोन भी चल रहा है, बहुत सारा मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करना। तो ये जैसे लोग होते हैं, और एक नेचर और है, सेंसिटिव नेचर। जो लोग अपना स्वभाव, जिनका सेंसिटिव भी होता है, सेंसिटिव मतलब थोड़ी सी बात हुई तो फील कर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आज 5 से 6 बीमारी सबको, मानसिक बीमारी सबको है, फ्री है, सभी के अंदर आप चेक कर लीजिए। आपको मैंने 7-8 बीमारी बताई मन की, ये 5-6 बीमारी एवरेज सबके पास है। और सामाजिक हेल्थ कैसी है? नफरत, ईर्ष्या, कॉम्पिटिटिवनेस, थेफ्ट, डेकॉइटीज, रेप्स एंड मर्डर्स, आज ये समाज की खबर है। आज के समाचार पत्र पे सबसे पहले यही खबरें होती हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आज हर घर घर में आइडेंटिटी क्राइसिस है, पति पत्नी से, बच्चे मां बाप से, ईगो के लिए लड़ रहे हैं, ऑफिस में बॉस और सबॉर्डिनेट बॉस से, एक अपने आइडेंटिटी क्राइसिस, सभी के अंदर एक मैंपन की भावना कि मुझे क्या लेबल मिला है, मुझे क्या लेबल दिया आपने, उस लेबल के लिए लड़ रहे हैं। पति पत्नी से लड़ रही है, पत्नी पति से लड़ रहा है, तो सबके सब लड़ रहे हैं। कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, आतंकवाद हो रहा है, किस बात पे, किस धर्म के नाम पर आतंकवाद हो रहा है, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है आज आध्यात्मिकता की कमी है, स्पिरिचुअलिटी की कमी है। आज जो हमारा आज का विशेष टॉपिक है, स्पिरिचुअलिटी इन वैल्यूज इन एजुकेशन। अगर आध्यात्मिकता होती तो आज आतंकवाद ना होता, कम्युनल राइट्स ना होते। और आतंकवाद का एक ही सोल्यूशन है कि स्कूल में वो बच्चों को शुरू से अगर सिखाया जाए, स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाए कि हम सब आत्माएं हैं, एक पिता की संतान है, और हम सब आपस में भाई भाई हैं। धर्म शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म सिर्फ शांति और प्यार और खुशी है। अगर ये हम सब सिखाएं तो कभी भी आतंकवाद पैदा ही ना हो, खत्म हो सकता है। इसका एक ही सोल्यूशन है ये। अब देखिए खुशी क्या चीज है, क्या हंसने को खुशी कहते हैं? क्या आपने देखा रामायण सीरियल? देखा था रामायण सीरियल में हंसता कौन रहा और जो मुस्कुराता कौन रहा? जो सारी रामायण में हंसता रहा वो कौन था? रावण। और जो कभी भी हंसा नहीं किंतु मुस्कुराता रहता था वो कौन था? राम। टेंशन में कौन था? रावण। तो हंसना और खुशी एक बात नहीं है, खुशी क्या चीज है? खुशी अंदर की बात है. हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट. खुशी कब आती है? जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तब आप खुश होते हैं. और वो एक अंदर के अंदर से वो सिर्फ मुस्कुराहट का रूप लेकर के आती है और वो मुस्कुराहट सदा बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है. सोते सोते भी आप मुस्कुराते रहते हैं. आज कोई आदमी खुश है क्या दुनिया में? जैसे मैंने बताया आज कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है दुनिया में. क्या कोई आदमी खुश है आज दुनिया में? क्या समझते हैं आप? हमारे टीचर बंधु क्या समझते हैं बताइए? आप खुश हैं? क्यों खुश नहीं है? क्योंकि खुशी कहां से आती है? खुशी जो रियल हैप्पीनेस कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट. जब आपका मन और बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, तो आप खुश होते हैं. आज किसी भी इंसान का मन और बुद्धि शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है. कुछ ना कुछ मन में कुछ और है और अंदर कुछ है, बाहर कुछ और है, इसलिए आज खुश नहीं है इंसान. शांति, अगर मन शांत है तो आप खुश हो सकते हैं. अगर मन ही आपका अशांत है तो खुश कहां से होंगे? ट्रूथफुलनेस, अगर आप अंदर बाहर सच्चे हैं, सत्यता है आपके जीवन में, तो आप खुश हैं, नहीं तो अदरवाइज आप खुश नहीं रह सकते हैं. फियरलेसनेस, अगर आप निर्भय हैं तो आप खुश हैं. अगर आपके अंदर निर्भयता नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते हैं. अगर आपके मन में डर है तो आप खुश हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं. अगर आपके स्वभाव में सरलता है, सरल स्वभाव है आपका, जो मिला उसमें खुश रहे, संतुष्ट रहे, तो आप खुश रह सकते हैं. अगर आपके अंदर सहन शक्ति है तो आप खुश हैं. अदरवाइज आदमी का आज का इंसान ऐसा है गुब्बारे के जैसा, हवा भरी तो फूल के बड़ा हो गया, किसी ने आके सुई लगाई तो पिचक के छोटा सा हो गया. आज का इंसान भी थोड़ी सी खुशी मिलती है, थोड़ी सी प्राप्ति होती है, फूल के कुप्पा हो जाता है, अपने जैसा किसी को समझता नहीं है. थोड़ा सा कोई मुसीबत आ जाती है, एकदम घबरा जाता है सहन शक्ति ना होने के कारण से, और एकदम दुखी हो जाता है. फिर अगर आपके अंदर मधुरता है तो आप खुश रह सकते हैं. अगर मीठा बोलने कड़वा बोलते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते हैं. लार्ज हार्टेडनेस, अगर आपका दिल बड़ा है, ये दिल नहीं, ये दिल बड़ा होगा तो सांस नहीं आएगा, सांस फूल जाएगा, चला नहीं जाएगा. उदारता, उदारता बड़ी दिल माना उदारता, आप दूसरों की गलती को समझ सकते हैं, दूसरों की गलती को भूल सकते हैं, दूसरों की गलतियों को माफ कर सकते हैं, तो आप खुश रह सकते हैं. एम्पैथी, अगर आपके अंदर रहम है, दूसरों के प्रति रहम है, दूसरों की गलतियों पर आप उनको टोकते नहीं हैं, उनको सिर्फ प्यार से समझा देते हैं, तो आप खुश रह सकते हैं. गरीबों पर, बीमारों पर आप रहम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आप खुश रह सकते हैं. लव, सच्चा प्यार, आज इसकी बहुत कमी है समाज में. आपको शायद जानते होंगे, एक बार एक मेरे मोबाइल पे SMS आया था कि उसमें लिखा था, एक फिश, छोटी फिश अपनी मां से कहती है कि मदर, व्हाई वी फिशेस कैन नॉट लिव ऑन द अर्थ. हम मछलियां जमीन पर क्यों नहीं रह सकती हैं? तो उसकी मदर ने पता क्या जवाब दिया, नो चाइल्ड, मदर इज मेंट, दिस अर्थ इज मेंट ओनली फॉर सेल्फिशेस. धरती जो है किसके लिए बनी है? पानी में मछलियां रहती हैं, फिश रहती हैं, और धरती पे कौन रहते हैं? सेल्फिश रहते हैं. ये ठीक बात है, गलत बात है? गलत बात है, गलत बात है. ये तो मछली का ख्याल था, किंतु देखिए आज सिर्फ एक इंसान है जिसने हॉस्पिटल बनवाए, जिसने रोड्स बनवाए, जिसने एरोप्लेन बनाया दूसरे लोगों की सुविधा के लिए, पंखे बनवाए, AC बनवाए, है ना? तो आज सिर्फ इंसान ही दूसरों की मदद करता है, बाकी कोई भी पशु किसी के ऊपर मदद नहीं करते हैं. मदद करते हैं किसी की? पशु कभी किसी की मदद करते हैं? कभी किसी की मदद नहीं करते. तो इंसान के अंदर ही रहम की एक भावना होती है, बाकी किसी के अंदर रहम की भावना नहीं होती है. तो इंसान ही एक ऐसा है जिसके अंदर दूसरों से सच्चा प्यार कर सकता है, अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान कर सकता है. नहीं, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? देश के लिए हम जान कुर्बान करते हैं, अपने घर वालों के लिए अपनी जान देते हैं, है ना? अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं. तो वो सिर्फ एक इंसान करता है, पशु कभी नहीं करते हैं. सेक्रीफाइस, जो त्याग करते हैं वो सदा खुश रहते हैं, और जो संतुष्ट रहते हैं, जितना मिला मेरे भाग्य का, समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं, किसी को नहीं मिलता है. तो अगर आपके पास ये क्वालिटीज हैं तो आप खुश रह सकते हैं. अब हम आते हैं कि अभी आज आज लगभग 95% डिजीजेज दुनिया में, जितनी 95% बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, तनाव से रिलेटेड हैं, या साइकोसोमेटिक कहते हैं उनको, अर्थात पहले मन में आती हैं फिर तन में आती हैं। तो क्या करें हम, आज हम देखें सॉल्यूशन क्या है इसका, इसका क्या है हमारे पास, इसको क्या कैसे हम सॉल्व करें। जितने जितने हॉस्पिटल्स बढ़ गए, डॉक्टर्स बढ़ गए, गली गली में डॉक्टर्स हैं, गली गली में हॉस्पिटल बन गए, आज कोई बीमार हो जाए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, फिर भी हम स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पाते, ना खुश रह पाते हैं। होटल से में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते पीते हैं तो भी खुश नहीं हो पाते। तो क्या करें हम, कहां जाएं, कहां, चांद पे चलें सभी, धरती पे खुश नहीं है, चांद पे चलें सभी, चांद पे नहीं, मंगल ग्रह पे चलें, धरती पे रहना ना, तो धरती पे रहकर कैसे खुश रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मॉडर्न ब्रेक थ्रूज क्या है मेडिसिन में, आज नई नई दवाइयां आ गई हैं, किंतु कोई दवाई भी बिना साइड इफेक्ट के नहीं है। कोई नई दवाई आती है कहते बहुत अच्छी दवाई आ गई, दो साल बाद पता लगता उससे लोग, बहुत सारे लोग मर गए, दवाई बैन हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा अखबारों में कि वो दवाई खराब है, उतने इतने बच्चे मर गए उससे, ऐसा नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान हुआ। तो नई ड्रग्स ट्राई करना भी बहुत खतरनाक होता है कई बार। दूसरा लेजर थेरेपी, जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी जब 2000 में आई तो इसका बहुत प्रॉमिस था कि हम सभी बीमारी का इलाज कर देंगे, हर बीमारी का शुरू से इलाज कर देंगे। तो बड़ी बड़ी जगह हमारे जो स्टेम सेल थेरेपी शुरू, वो उसके बचपन, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसकी सेल्स को बचपन से स्टोर करना शुरू कर दिया। किंतु अभी जब से जीन थेरेपी थोड़ी पेशेंट अपने पेशेंट्स पे ट्राई की तो इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, और ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता फिर बाद में, तो इसलिए इतनी यूजफुल नहीं हो पाए पिछले 14 साल में। इट इज नॉट ए सक्सेस एंड वेरी कॉस्टली बट नॉट सक्सेसफुल। फिर स्टेम सेल थेरेपी, इसके रिजल्ट्स भी बहुत कोई वंडरफुल नहीं आए, कुछ लोगों में अच्छा हुआ किंतु बहुत फायदा नहीं हुआ। फिर हाईटेक सर्जिकल प्रोसीजर्स, आज रोबोट्स आ गए हैं सर्जरी के लिए। रोबोट्स के आने से क्या हो गया कि जो ऑपरेशन 20,000 का होता था आज 1,00,000 का हो गया, कॉस्ट 5 गुना बढ़ गई, फायदा कुछ विशेष नहीं हुआ। तो ये जितने भी नई ब्रेक थ्रूज मेडिसिन में आई हैं सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और प्लस साइड इफेक्ट काफी ज्यादा हैं और बहुत महंगी है। किंतु एक रियल ब्रेक थ्रू हुआ है अभी मेडिसिन में, वो क्या हुआ है, और वो ब्रेक थ्रू इतना बढ़िया है विच इज एज पावरफुल एज ड्रग्स और सर्जरी, और समटाइम्स इवन मोर पावरफुल। वो क्या है, ये 5 बातें अपने जीवन में आप बदल दें, आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये 5 बातें आप खुद कंट्रोल कर लें तो आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं। पहली बात, हाउ वी रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। मैं समझता हूं हर इंसान, आप भी जानते, सभी बैठे टीचर बंधु बैठे हैं, आप के जीवन कोई ऐसा है जिसके जीवन में कभी कभी टेंशन ना आई हो, हाथ उठाएं जिनके जीवन में कभी टेंशन ना आई हो। टेंशन हर एक के जीवन में आती है, कोई व्यक्ति धरती पर ऐसा नहीं जिसको टेंशन ना आती हो, तनाव ना आता हो। किंतु हमारे अंदर वो क्या कैपेसिटी है कि हम उस तनाव को फेस कर सके, उसको मैनेज कर सके, ये हम सब सीख सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि कैसे हम अपने जीवन के तनाव को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, ये भी हमारे हाथ में है, कोई हमको जबरदस्ती खिला नहीं सकता है। हमको सिर्फ जानने की आवश्यकता है हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। अगर हम ये जान जाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अन्न जैसा मन वैसा तन। तो अन्न जैसा मन, जैसा आप भोजन करेंगे उससे आपका मन बनेगा, और फिर जैसा आपका मन होगा वैसा वैसा आपका तन बनेगा। तो अन्न का बड़ा विशेष महत्व है, तो आप कैसा भोजन खाएं ये आपको पता होना चाहिए, क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, ये आप अपने आप को ठीक ट्रेन कर सकते हैं। तीसरी बात, स्मोकिंग, सिगरेट, आज लगभग 25% लोग आज सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। ये एक ऐसा प्रिवेंटेबल कॉज है जिसके द्वारा जिसको हम खत्म कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है पीना या ऐसे काम करना, तो इसको हम दृढ़ता के साथ जो करते हैं वो छोड़ सकते हैं। चौथी बात, एक्सरसाइज और नॉट, क्या हम रोज सैर करते हैं। सैर करना कोई ऑप्शनल नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, हाथ उठाएं। लगभग 30% लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, और जबकि ये वॉकिंग करना सबके लिए अति आवश्यक, अति आवश्यक मान अति आवश्यक, सबके लिए अति आवश्यक है। बिना 45 मिनट मॉर्निंग वॉक किए किसी को भी भोजन करना नहीं चाहिए, नाश्ता नहीं करना चाहिए। पहले 45 मिनट वॉकिंग कर लें, उसके बाद नाश्ता करें। अगर आप जीवन में यह नियम अपना लें तो आपके जीवन की 50% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी बीमारियां भाग जाएंगी सिर्फ 45 मिनट डेली। फिर लास्ट में जो है वो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड सपोर्ट, आपके संबंध कैसे हैं, आपस में संबंध कैसे हैं, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार दें, आपको रेस्पेक्ट दें, तो आपको पहले प्यार देना पड़ेगा, आपको रेस्पेक्ट खुद देनी पड़ेगी, तो आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो आप अगर ये 5 बातों को ठीक कर लें तो आपको कोई दवाइयां आपकी आधे से कम हो जाएंगी, आपको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या बहुत कम आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो आप ये आज की मॉडर्न ब्रेक थ्रू, इसको मेडिकल साइंस मानती है। और एक नई रिसर्च जो 2009 में आई जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, वो उसने क्या बताया कि अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, आप रेगुलर लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, समय पर खाते हैं, लो फैट कम घी वाली, ज्यादा रेशे वाले, ज्यादा फल सब्जी वाले और शाकाहारी भोजन समय पर करते हैं और साथ में लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब सबसे मुख्य बात लाइफस्टाइल में है आपका सोने का समय, उठने का समय। आज सभी लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, जबकि कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और इसका हमारे अंदर एक घड़ी है, यहां हाइपोथैलेमस में उसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, वो घड़ी कहती है रात को 10-12 बजे से पहले, मिडनाइट से पहले नींद की एक साइकिल पूरी कर लो। एक साइकिल 2 घंटे की होती है, तो कितने बजे सोना चाहिए हमें, कितने बजे सोना चाहिए, 10 बजे, 10 माना बस 10 से पहले 10 बजे आप अपने डे को ऑफ कर दें, बंद कर दें और फिर सो जाएं। और फिर 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है जिसे अमृत वेला भी कहते हैं, क्योंकि पहले 10 से 12 की साइकिल में हमें 2 घंटे में सिर्फ 10 मिनट सपने आते हैं, 110 मिनट गहरी नींद होती है, 12 से 2 में 30 मिनट सपने आते हैं और 90 मिनट गहरी नींद होती है, 2 से 4 की नींद में 50 मिनट सपने आते हैं और 70 मिनट गहरी नींद होती है। अगर आप 4 से 6 सोते हैं तो 4 से 6 की नींद में 90 मिनट सपने आएंगे और डरावने सपने आते हैं और 30 मिनट सिर्फ गहरी नींद आती है। तो ये 4 से 6 की नींद ज्यादा खर्चा है, फायदा कुछ भी नहीं है। 4 बजे तक के सपने याद नहीं रहते हैं, 4 से 6 के सपने याद रहते हैं, उस समय हार्मोन निकल रहे होते हैं 4 बजे, इसलिए कभी भी 4 से 6 के बीच में सोना नहीं चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। अगर आप हेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं तो आप ये नियम अपनाओ। तो इन्होंने 3 बातें देखी, मेडिटेशन, डाइट और लाइफस्टाइल। और इन्होंने देखा जो जीन्स होते हैं बीमारी के, हर बीमारी के लगभग जीन्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के, हार्ट की बीमारी के, मोटापे के, आपके गठिया की बीमारी हो जाती है, SLE हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, अल्सरेटिक कोलाइटिस होता है, हड्डियां खराब होती हैं, लगभग हर बीमारी की जीन्स होते हैं। तो माता पिता से आपको जीन्स मिले हैं, तो इन्होंने रिसर्च की तो ये पाया जो ये 3 बातें करते हैं उनके अंदर वो जीन, बीमारी के जीन 3 महीने के अंदर शांत हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, शट ऑफ हो जाते हैं। तो आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो सभी लोग मेडिटेशन करें, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट खाएं और समय पर सोएं, समय पर उठ जाएं, तो आपके बीमारी के जीन्स क्या हो जाएंगे, टर्न ऑफ हो जाएंगे। यही रिसर्च उन्होंने आगे बताया कि अगर आपको हार्ट की बीमारी है, कैंसर है आपकी फैमिली में, आप मोटे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग मोटे हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपके घर में गठिया की बीमारी है, तो ये जीन्स बीमारी के सिर्फ 3 महीने में उनको आप शट ऑफ कर सकते हैं या टर्न ऑफ कर सकते हैं और अच्छे जीन्स को एक्टिव कर सकते हैं। अगर ये आप 3 बातें करें तो, जो करेंगे वो हाथ उठाओ, वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ सभी जोर से ऐसी बात, क्योंकि बहुत सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, पैसा लगेगा क्या, डॉक्टर की फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको, है ना, डॉक्टर से बच जाएंगे। डॉक्टर की फीस, अच्छे डॉक्टर की फीस 1000 रुपया है, 1500 रुपया है ना, तो आप 1500 रुपए से बचेंगे ना। अब मैं आता हूं मॉडर्न कंसेप्ट क्या है हेल्थ का, ह्यूमन बीइंग एंड हेल्थ। इंसान क्या है? इंसान खाली बॉडी नहीं है। बॉडी तो बॉडी कब कहते हैं? जब कोई हमारे पास पेशेंट सीरियस आता है, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, बचा नहीं पाते, तो जब हम आईसीयू के बाहर आते हैं तो हम क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, ही हैज गॉन और शी हैज गॉन, टेक द बॉडी। तो बॉडी कभी बनती है? जब आत्मा निकल जाती है ना। तो इंसान खाली बॉडी नहीं है, इंसान क्या है? ह्यूमन बीइंग इज ए कंटिन्यूम ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। इंसान तीन चीजों से बना हुआ है, स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मा, मन, माइंड एंड बॉडी। आत्मा, मन और तन, तीन चीजों का बना हुआ है। अगर एक इंसान के पास फिजिकल एनर्जी तो है, किंतु उसके मन में स्पिरिचुअल एनर्जी, मैं कह रहा स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब क्या है? शांति, प्यार और खुशी। इंसान के पास अगर शांति, प्यार, खुशी नहीं है, और मेंटल एनर्जी, मन माना टीम, मन के चार एस्पेक्ट्स होते हैं, टीम, थॉट्स, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड्स एंड एम फॉर मेमोरीज। हिंदी में कहें तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। ये टीम आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जिनके पास तीनों चीजें हैं, जिनके पास शांति, प्यार, खुशी भी है, टीम भी पॉजिटिव है और फिजिकल एनर्जी, अर्थात भोजन आपका सात्विक है, आप रोज सैर करते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, और जो शरीर के लिए आवश्यक दवाइयां वो भी आप समय पर लेते हैं, तो तीनों एनर्जी के मिश्रण से आप एक इंसान बनते हैं। अगर आपके पास शांति, प्यार और खुशी नहीं है, और आपका मन जो है हमेशा नेगेटिव रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? आप सोच रहे हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा। और तीनों चीजें गलत हैं तो क्या होगा? जो इंसान का खाना पीना भी गलत है, सिर्फ खाता है, सोता है और नेगेटिव सोचता है और गुस्सा करता रहता है, उसे क्या कहते हैं? आप सोच लेना, ठीक है। इंसान सिर्फ जिनके पास तीनों चीजें हैं उसे इंसान कहते हैं। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? तीसरे वाले को कहते हैं? आप सोचना, फिर मुझे बाद में बता देना। हेल्थ किसे कहते हैं? स्वास्थ्य को स्थिति नहीं है। WHO की डेफिनेशन जो थी, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। स्वास्थ्य को स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य हमेशा बदलने वाली चीज है। अभी एक मिनट में अचानक कुछ हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्थिति सदा एक जैसी रहती है, स्वास्थ्य सदा बदलता रहता है। तो हेल्थ इज अ डायनेमिक प्रोसेस, हेल्थ सदा एक बदलने वाला प्रोसेस है, ऑफ हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। तीनों एनर्जी के जो उनके अंदर जो हार्मनी होती है, एनर्जी जो आपस में बहती रहती है, सामंजस्य को, उसमें परिवर्तन को ही, उसमें एक हार्मनी बनी रहे, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। अगर थोड़ा बदल जाता है तो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। मन में कोई नेगेटिव विचार आ जाए, आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है। आप गलत खाना खा ले, तबीयत खराब हो जाती है। आप नींद ना करें, नींद कच्ची आए तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ज्यादा एक्सरसाइज कर ले तो स्वास्थ्य खराब, ना करें तो स्वास्थ्य खराब। दवाई ना खाना भूल जाए तो स्वास्थ्य खराब। नहीं, आपको कोई प्यार की कमी महसूस हो तो स्वास्थ्य खराब। नहीं, शांति अशांत हो जाए मन तो स्वास्थ्य खराब। तो तीनों में से कुछ भी खराब होगा तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब सिर्फ आत्मा और थोड़ी सी मेमोरी सेल्स, ये जो हमारे ब्रेन में थोड़ी सी मेमोरी सेल्स, ये नहीं बदलती। बाकी सारी बॉडी की सेल्स, हार्ट, आंतें, स्किन, आंखें, नाक, कान, सब कुछ, हड्डियां तक बदल जाती हैं 6 महीने से तिले करके 3 साल में, 2 साल में हड्डियां भी बदल जाती हैं। किस आधार पे? आपके मन के आधार पे। जैसे आपका सेट, टीम का सेट होता है, आपकी स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, जैसे आपके विचार होते हैं वैसी आपकी बॉडी बनती जाती है। आपकी पूरी स्किन 3 महीने में बदल जाती है। अभी आपने वोट डाला था, याद है आप सभी को, आपने वोट डाला था। वोट का निशान कहां जा रहा है? अभी अपने आप चेंज होता जा रहा है ना, स्किन पे से निशान उतर गया, नखून पे से निशान उतर गया, तो पूरी स्किन बदल रही है आपकी। 3 महीने में पूरी स्किन बदल जाती है, आंतें बदल जाती हैं, हार्ट बदल जाता है, हड्डियां भी 2 साल में बदल जाती हैं। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। हमारी बॉडी लगभग 70 से 80 हजार बिलियन कोशिकाओं से बनी होती है, और हर सेकंड में लगभग 1 लाख रिएक्शंस होती है 1 सेकंड में। एक कोशिका में एक सेकंड में 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं। आप सोच लीजिए, जब आप जल्दी करते हैं, जब आप चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो 1,00,000 की बजाय 1,25,000 होती हैं। एक सेकंड कितना होता है? एक सेकंड हो गया, एक सेकंड कितना होता है? ऐसे उसमें कितनी रिएक्शन हो गई? 1,00,000। कितनी कोशिका? एक कोशिका में आपकी बॉडी में कितनी कोशिकाएं हैं? 80,000 बिलियन कोशिकाएं। हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि इतनी रिएक्शंस होती हैं, और इतनी रिएक्शन के टॉक्सिन्स भी एक सेकंड में वॉश हो जाते हैं। किंतु जब आप जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं, तो एक्स्ट्रा रिएक्शन जो होती है 25,000-30,000, उसके टॉक्सिन बॉडी साफ नहीं कर सकती है, और वो जिस अंग में वो टॉक्सिन जमा होते जाएंगे वो अंग बीमार हो जाएगा। अगर हार्ट की नस में जमा होगा तो हार्ट की आर्टरी बंद हो जाएगी, अगर ब्रेस्ट में जमा होगा तो ब्रेस्ट में ट्यूमर बन जाएगा, अगर आपकी लीवर में जमा होगा तो लीवर खराब हो जाएगा, हड्डी में जमगे तो हड्डी खराब हो जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, वहां से खराब कमजोर हो जाएगी। तो ये जो है मेन कारण, इसलिए कहा जाता है हर बीमारी का कारण जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी या अपने मन की टेंशन शेयर ना कर पाना। अब क्या करें? तो हमने पिछले 16 साल में यह नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर, जिसके द्वारा हम अपने हार्ट के पेशेंट्स या सभी बीमारी के पेशेंट्स, हमारी बॉडी में या मन में जो भी बीमारी हो, इससे आप ठीक कर सकते हैं। ये 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर, 3D हेल्थ केयर क्या है? इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हेल्दी शब्द है वो दो शब्दों का बना हुआ है, हील प्लस दाई, अर्थात हील दाई सेल्फ, अर्थात हील यूर सेल्फ, अर्थात सारे विश्व में सिर्फ एक ही आदमी है वो जो आपको हील कर सकता है। वो कौन है? कौन है बोलिए? डॉक्टर है क्या? भगवान है क्या? भगवान है? भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी आपको ठीक करे? सारे विश्व में सिर्फ एक ही आदमी है, यस यू आर राइट, सारे विश्व में सिर्फ एक ही आदमी है जो आपको ठीक कर सकता है, वो कौन है? स्वयं आप हैं। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, भगवान की श्रीमत पर अगर आप चले, एक कदम चले, तो भगवान आपको 1,000 कदम मदद कर सकता है, किंतु ठीक आपको खुद को खुद करना, हिम्मत का कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो आप खुद को परिवर्तन करेंगे तो आपका हेल्थ ठीक होगा। तो अपने सबसे पहली बात जो हम सिखाते हैं लोगों को, कि अपने जीवन की बागडोर, अपने हेल्थ की बागडोर, खुश रहने की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। दूसरे के ऊपर मत छोड़िए कि ये ऐसा करे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये ऐसा करे तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। नहीं, मुझे खुश रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे सीखना है, राइट? तो आप तैयार हैं? वेरी गुड। अब जब मुझे स्वस्थ होना है तो कैसे स्वस्थ होना है? तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा मैं कौन हूं, सेल्फ अवेयरनेस। वो सेल्फ अवेयरनेस क्या होगी? हेल्दी शब्द हिंदी में कहते हैं, उसे कहते हैं स्वस्थ। स्वस्थ शब्द दो शब्दों से बना है, आयुर्वेद में बड़ा क्लियर बताया हुआ है। स्व माना अंदर वाला मैं, इनर सेल्फ, अस्थ माना स्थित, अर्थात जो अंदर वाले मैं में स्थित है। अंदर क्या है? आत्मा, सोल। तो स्व मीन्स आत्मा, अस्थ मीन्स स्थित, स्व मीन्स सोल एंड स्था मीन्स कॉन्शियस। सो हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस। आपको शायद ये कविता आपने पढ़ाई भी होगी, बच्चों को सुनी तो सबने होगी, गाई भी सबने होगी बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये कविता किसने लिखी थी मुझे बता सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है ये कविता किसने लिखी हुई है? यस, जो बताया उसको यहीं पर ऑन द स्पॉट 1,000 रुपीज इनाम। कौन बताएगा ये कविता किसका ऑथर कौन है इस कविता का? यस, कोई? तो आप तो सभी टीचर हैं, आप तो जानते होंगे। नहीं जानते हैं जी? नो नो रॉन्ग, मैं बताता हूं आपको। ये कविता 465 साल पहले एक फ्रेंच पोइट ने लिखी थी, और कैसे लिखी थी मैं आपको बताता हूं। एक कवि होता है फ्रेंच फ्रांस में, पेरिस में, वो उसका 70 साल के आसपास उसकी उम्र थी उस समय, और उसका एक दोस्त होता बचपन का, दोनों लगभग सेम उम्र के थे, बचपन साथ साथ रहते थे, साथ वाले घर में था वो, दोनों इकट्ठे बैठे दिन में, अचानक इसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है, हार्ट बंद हो जाता है। उसके घर वालों साथ वालों को बताता है, घर वाले आते हैं, उसकी बॉडी को कफिन बॉक्स में डालते हैं, शाम को 5-6 बजे सिमेट्री में दबा देते हैं। ये बैठा हुआ है शाम को, अकेला है, बाहर बैठा है, आज बहुत उदास है, आसमान की तरफ देख रहा है, वो सोच रहा है मेरा दोस्त कैसे मर गया, मैं जिंदा हूं वो कैसे मर गया, उसमें क्या निकल, क्या था, वो जिंदा कैसे था, मैं वो मर कैसे गया, मैं जिंदा कैसे हूं। सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आता है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ एक आसमान में तारा आया था, कहा गया कि इस तारे ने ईसा मसीह के रूप में जन्म लिया है। तो तब उसके मन में ख्याल आता है कि यहां पर एक सितारा है जो चमक, जब तक वो चमक रहा है तब तक शरीर में सब कुछ चल रहा है, जैसे वो निकल जाता है तो वो सब कुछ चलना बंद हो जाता है, हार्ट भी चलना बंद हो जाता है, सांस भी आना बंद हो जाता है, किंतु वो सितारा इतना नजर तो नहीं आ रहा है, मेरे अंदर भी है किंतु नजर नहीं आ रहा, जब मेरा दोस्त मर गया तब उसके अंदर निकला तो भी नजर तो नहीं आया, तो वो सितारा कैसा है, कितना वंडरफुल है। तब उसके अंदर से कविता निकलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर परमात्मा के गॉड के बारे सोचता है, वो गॉड को ढूंढता है, गॉड कहां पर है, धरती पर, उसे नजर नहीं आता है, उसे ये तो रियलाइज होता है गॉड भी एक स्टार है, इस धरती पर कहीं नहीं, सूरज पर है, चांद पर है, तारों पर है, नहीं, तो देखता है कि इसके कोई, इसके बियॉन्ड एक और सितारा है जो सदा चमकता रहता है, कभी भी बुझता नहीं है। आत्मा तो ट्विंकल ट्विंकल करती है किंतु वो सदा एक जैसा चमकता है, तो वो कहां पर है, सूर्य चांद तारों के भी परे है, अबाउ दी स्काई है। तो वो कहता है, फिर लिखता है, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, लाइक ए डायमंड। फिर गलती करता है लिखने में, लिखता है इन द स्काई, क्या लिखना चाहिए था, अबाउ द स्काई, है ना। तो ऐसे उसने दो लाइनें आत्मा के बारे में लिखी और दो लाइनें परमात्मा के बारे में लिखी। 1806 में दो बहनें थी लंदन में, किम टेलर एंड जेन टेलर, उन बहनों ने इसमें 12 लाइनें और जोड़ दी और इसको नर्सरी राइम के रूप में डेवलप किया। तो 1806 से ये जो पोएम बन गई 16 लाइनों की बन गई, और तब से किसमें यूज होती है, नर्सरी में यूज की जाती है। तो ये जेन टेलर, किम टेलर ने 1806 में शुरू की। ओके, ओम शांति। ये अभी आप इस कविता को गा सकते हो, एक बार गाएंगे सभी इस कविता को, इस कविता को सभी गाइए आप, ट्विंकल हाउ आई वंडर वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड अबाउ द स्काई, राइट। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अब इंसान सिंगल डायमेंशन का नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। टू हील दाई सेल्फ वन नीड सेल्फ एम्पावरमेंट, एंड एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम ट्रू नॉलेज। सत्य ज्ञान से ही हमें शक्ति मिलती है, और सत्य कौन है, ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम गॉड, बिकॉज गॉड इज ट्रूथ, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है, अर्थात पवित्र है। तो परमात्मा कैसे देता है ये ज्ञान, ये नॉलेज कैसे देता है, थ्रू इंफॉर्मेशन, पहले सूचना देता है, फिर एजुकेशन पढ़ाता है, और उसके बाद समझाता भी है। पहले अपने बारे बताता है, मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कहां पर हूं, कैसे तुम लोगों को रचता हूं, कैसे आत्माओं को रचता हूं, फिर आत्मा के बारे बताता है, मन के बारे बताता है, बॉडी के बारे बताता है। और जब हम तीनों के बारे में जान जाते हैं, आत्मा मन और तन के बारे में, और जब तीनों की हार्मनी होती है आपस में, तीनों एनर्जी की, तब हम एवर हेल्दी और एवर हैप्पी बन सकते हैं। अब आप यहां देखें, ह्यूमन बींग शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, ह्यूमन प्लस बींग। ह्यूमन शब्द एक लैटिन शब्द से आया है, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है सॉयल, मिट्टी, और बींग माना लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स माना सोल, सोल माना इनर सेल्फ। अगर ये दो शब्दों में आप डिफरेंस देखें, सॉयल एंड सोल, इसमें स्पेलिंग में क्या फर्क है, सॉयल माना आई, आईनेस है, आईनेस एंड माइनस, मैपन और मेरापन, और सोल माना यू, यूनिवर्सल। तो जब अपने आप को बॉडी समझ लेते हैं आप, तो ये हमारा आउटर सेल्फ है, और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर आईनेस और माइनस आ जाती है, ईगो आ जाती है, अटैचमेंट आती है, और यूनिवर्सल से जब अपने को आत्मा समझते हैं तो इससे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आती है, वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग आती है। और अगर हम इसमें आगे चलें, आउटर सेल्फ के तीन एस्पेक्ट होते हैं, या तो ये बॉडी है, या रोल, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पिता हूं, मैं पति मां हूं, मैं बिजनेसमैन, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं। तो ये रोल लेबल समाज से मिलता है, लेबल को हम चिपका लेते हैं अपने ऊपर और अपने आप को यही समझ के चलते रहते हैं। और तीसरा मटेरियल, जो हमारे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, जो बाहर की बिलोंगिंग्स हैं, तो तीसरी चीज हमारे पास ये है। ये तीनों की तीनों चीजें अनस्टेबल हैं, बदलने वाली हैं, सदा बदलती रहती हैं, इसलिए हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और इससे क्या है, इस इनसिक्योरिटी की वजह से, डर की वजह से हमारे अंदर पांच विकार आते हैं। ये जो अभी पांच विकार सुनते हैं आप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों के पांचों विकार इनसिक्योरिटी से पैदा होते हैं, डर से पैदा होते हैं। और इनके दो दो बच्चे भी हैं फिर, ईगो, ईगो अहंकार के दो बच्चे कौन से हैं, टाइप ए बिहेवियर। जो ईगो वाला व्यक्ति होता है ना, हमेशा जल्दीबाजी में रहता है, प्रेशर में रहता है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, मैं बड़ा हूं, मेरी बात सबको माननी चाहिए, सबसे पहले मेरा ही काम होना चाहिए, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये आदमी का, इसे हम टाइप ए बिहेवियर कहते हैं। जेलसी, ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या में रहता है, दूसरों से जलता है। लस्ट, काम विकार, काम विकार से दोष के कारण आलस्य और अविलापन पैदा होता है और इससे वापस काम विकार पैदा होता है। एंगर, क्रोधी व्यक्ति के अंदर दो उसकी नेचर क्या बन जाती है, सिनिसिज्म और हॉस्टिलिटी, एक तो बदलने की भावना और एक दोष निकालने की आदत। ग्रीड, जो लोभ खाली पैसे का नहीं होता है, नाम मान शान का भी होता है। और ये इसके दो बच्चे कौन से हैं, शक और अनुमान। और अटैचमेंट, मोह, मोह के भी दो बच्चे कौन से हैं, चिंता और भय। जैसे आपका बच्चा स्कूल से नहीं आया, एक बजे पहुंचना था, नहीं पहुंचा, तो क्या होता है, मन में क्या विचार आते हैं, क्या कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बच्चा शायद एक्स्ट्रा क्लास लग गई होगी या अपने दोस्त के साथ टाइम लगा दिया होगा, क्या सोचते हैं हमेशा, एक्सीडेंट ना हो गया हो, किसी ने उठा ना लिया हो, है ना, डर लगता है ना, चिंता होती है ना। और ये जो है, इनके 10-10 बच्चे और हैं फिर आगे, तो ये नेगेटिव, जितना बॉडी कॉन्शियस होते जाते हैं, आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, तो हमेशा नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। और ये नेगेटिविटी ही कारण है स्ट्रेस का, तनाव का कारण है। और जब आपका मूड खराब होता है, ऐसे 100 के आसपास मूड स्टडी हुए हैं, तो मतलब ये देखा कि मूड डिसाइड्स योर फूड, फिर जैसा मूड होता है वैसा खाना आप खाते हैं। अगर आप बिटरनेस, अंदर कड़वाहट महसूस कर रहे हैं, डायबिटीज होते हुए आप मीठा खाते हैं, कंपल्सरी बिहेवियर हो जाता है, आप मीठा खाने की दिल होती है, चोरी करके भी खाएंगे, भले पता मेरी शुगर बढ़ जाएगी तो भी मीठा खाएंगे। अगर आप अंदर ड्राई महसूस कर रहे हैं तो फ्राइड खाने को दिल होता है, अगर बहुत बोरिंग महसूस करें चटपटा खाने को दिल करता है, पकौड़े खाने को दिल करेगा, है ना, जैसे बरसात के दिनों में होता है, है ना, बाहर जा नहीं सकते तो पकौड़े बनाओ, है ना, तो रॉन्ग फूड खाते हैं। और फिर ऐसा आदमी को नींद देर से आती है, 10 बजे सोने जाएगा नींद नहीं आएगी, 10-11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, 1 बजे जाके नींद आएगी, फिर 1 बजे सोएगा तो 8 बजे उठेगा, है ना। तो जो आदमी देर से सोएगा, देर से उठेगा, तो सैर करेगा क्या, सैर नहीं कर सकता। और ये आदमी टेंशन में रहता है, इसको देख करके लोग ऑफर करते हैं, तुमको टेंशन रहती है तो क्या करो, एक सिगरेट पी लो, टेंशन खत्म हो जाएगी, शराब पी लो, घूट अंदर दम गम बाहर, नहीं, तो एक बार आदमी ट्राई करता है और फिर आदत पड़ जाती है। और एक सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है आज समाज में, आप बताएंगे कौन सा, आपको भी है, कौन सा वाला, चाय कॉफी, चाय कॉफी, है ना, लगभग सभी पीते हैं, वो भी एक एडिक्शन है। तो इस तरह से आदमी एडिक्शन का दास हो जाता है और ऐसा आदमी बीमार और दुखी रहता है। इसकी बजाय अगर आप इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाएं तो क्या होगा, अपने को आत्मा समझें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझें, शाइनिंग स्टार समझें, स्पार्कलिंग स्टार समझें, तो क्या होता है, आप स्टेबल रहते हैं, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना बीमार होती है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं। तो यही स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप इस स्पिरिचुअल लैंग्वेज को समझ जाएं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, इस देह को चलाने वाली मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा 7 गुणों से, इसको 7 एनर्जी से इसको नरिश कर रही हूं बॉडी को। 7 गुण कौन से हैं, इसका फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है, आप याद कर लें, KP² KPP लो हाई ब्लड प्रेशर, KP² लो हाई ब्लड प्रेशर, के फॉर नॉलेज ज्ञान, ज्ञान का भी एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ज्ञान का सार रूप में एबीसीडी है, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, बाबा मीन्स परमात्मा गॉड, सी फॉर कनेक्शन अर्थात मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, एंड डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो इस ज्ञान से पवित्रता आती है, प्योरिटी आती, प्योरिटी ऑफ माइंड आता है, पवित्रता से शांति आती है, शांति माना कम विचार, उससे लव पैदा होता है, लव माना केयरिंग फॉर अदर्स, अनकंडीशनल केयरिंग फॉर अदर्स, उससे खुशी पैदा होती है, उससे आनंद पैदा होता है, उससे शक्तियां पैदा होती हैं। तो ये सात एनर्जी जो आत्मा के अंदर है, इन सातों एनर्जी के आधार पर ही आत्मा को सतो प्रधान कहते हैं, सतो माना फुल ऑफ सेवन, सात माना सतो माना फुल, सतो माना सात, प्रधान मीन्स फुल, फुल ऑफ सेवन। और जब आत्मा रजो, रजो माना सातों एनर्जी आधे से कम हो गई, तमो माना सातों एनर्जी ना के बराबर रह गई, आज का इंसान तमो प्रधान है, सातों एनर्जी ना के बराबर है। जब आत्मा के पास सातों एनर्जी भरपूर होती है तो इससे वैल्यूज बनती है, ये जब वैल्यूज अंदर है, सातों गुण अंदर है, तो कर्मों में वैल्यूज नजर आती है, सत्यता, निर्भयता, धैर्यता, गंभीरता, संतुष्टता, हर्षित मुक्तता, एकाग्रता, दृढ़ता, संतुष्टता। तो ये वैल्यूज हमारे जीवन में कैसे बनती है, जब अंदर सातों गुण हो तो, क्योंकि सातों गुण रॉ मटेरियल है इन वैल्यूज का। आज सभी जगह वैल्यूज की कमी है, क्योंकि आज आत्मा तमो प्रधान है, सातों गुण नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जब आदमी के अंदर सातों गुण और वैल्यूज रहती हैं, स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज रहती हैं, तो आदमी तनाव मुक्त हो जाता है। तब ऐसा आदमी, वो आदमी जीने के लिए, वो खाने जीने खाने के लिए जी रहा था, ये आदमी जीने के लिए खाता है, जो खाना आवश्यक है हेल्थ के लिए वही खाना खाता है, जीभ के स्वाद में आकर के नहीं खाता है। ऐसा आदमी समय पर सो जाता है, समय पर उठ जाता है, 10 बजे सो जाएगा, 4 बजे उठ जाएगा। ऐसा आदमी रोज सैर कर सकता है, उसके दिल में होता है मैं स्वस्थ रहूं। ऐसा आदमी के सामने सदा मुस्कुराता रहता है, उसको कोई भी उसको कभी स्मोकिंग की, शराब की या चाय की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसा आदमी सदा हेल्दी और हैप्पी रहता है। अर्थात ये जो इनक्यूरेबल शब्द आया है, जिसका मतलब ये नहीं इट इज नॉट क्यूरेबल, इसका मतलब ये है इट इज इन प्लस क्यूरेबल, इट मींस इट इज क्यूरेबल इफ यू गो इन, अपने अंदर जाओ, मैं कौन हूं इसको समझो, तो आप हर बीमारी को क्योर कर सकते हैं। यही फार्मूला है स्ट्रेस का, तनाव का, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। जब ये रेशियो एक से अधिक हो जाता है तो आप तनाव महसूस करते हैं। तो प्रेशर्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर के प्रेशर्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में कोई तकलीफ हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो सकती है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, आपके अंदर कोई सेंसिटिव नेचर हो सकती है। और एक्सटर्नल प्रेशर, परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लीगल प्रेशर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस में जहां कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको आप बदल नहीं सकते हैं तुरंत, किंतु एक चीज आपके हाथ में है, वो क्या है, वो है आपकी आत्मिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, उसको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो। तो अगर आप आत्मिक शक्ति बढ़ा लें तो क्या हो जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। आपने कभी बेगमपुर देखा है क्या, कभी बेगमपुर देखा आपने, बेगमपुर नहीं देखा, आप सभी बेगमपुर के बादशाह हैं, अभी समझ में आई आपको, नहीं आई, बेगम जहां कोई गम ना हो, तो आप सब कौन है, बेगमपुर के बादशाह। अगर आपकी आत्मिक शक्ति ज्यादा है तो आप क्या बन जाएंगे, बेगमपुर के बादशाह, आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी। और इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है एबीसीडी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। जितना इसको मन में बार बार रिवाइज करें, रियलाइज करें, अनुभव करें, तो उतना आपके अंदर आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी और सारे तनाव आपके खत्म हो जाएंगे। और ये आत्मा कैसे बॉडी को नरिश करती है, ये सातों एनर्जी बॉडी की हर कोशिका के लिए आवश्यक है, और मन के माध्यम से आत्मा शरीर को नरिश करती है सातों एनर्जी से। मन माना टीम, अगर आपकी टीम पॉजिटिव है तो एनर्जी आपकी बॉडी में जाती रहती है, अगर आपकी टीम नेगेटिव हो जाती है तो आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। टीम माना, अगर आपकी स्मृति में मान लीजिए आपके प्यार के प्रति आपके मन में नेगेटिव बातें भरी हुई हैं, कि प्यार आजकल सब लोग मतलब का प्यार करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, मतलब हो तो लोग बात करेंगे तो नहीं करते हैं, आपका एटीट्यूड प्यार के प्रति नेगेटिव है, भावनाएं नेगेटिव है, संकल्प नेगेटिव चलते हैं, विचार नेगेटिव चलते हैं, तो यहां तो प्यार है आत्मा के पास, किंतु आपके हार्ट में नहीं पहुंचेगा और हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। तो आज के जमाने में जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसका मुख्य कारण आपकी टीम नेगेटिव हो गई है। और टीम पॉजिटिव कहां से बनती है? जितना आप सत्य को सत्य का अनुभव करते हैं, ट्रुथ क्या है, मैं आत्मा हूं, दे नहीं हूं, तो जितना इस आप ट्रुथ पे टिकेंगे, एबीसीडी में टिकेंगे, उतनी आपकी टीम पॉजिटिव होती जाएगी। जितना आप अनरियल में टिकेंगे, मैं डॉक्टर हूं, रोल कॉन्शियस बनेंगे, बॉडी कॉन्शियस बनेंगे, मेटेरियल कॉन्शियस बनेंगे, अनरियल को अनरियल के में टिकेंगे, उतना अधिक आपकी क्या होगा, आपकी टीम नेगेटिव होती जाएगी। तो इसलिए अपनी ट्रुथ में टिकें और टीम को पॉजिटिव बनाएं और अपने समय आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ें, तो सातों एनर्जी आपके अंदर आएंगी, क्योंकि परमात्मा कौन है, सातों गुणों का सागर है। आपको शायद आज का कोर्स में बताएंगे कि कैसे आत्मा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के अपने सातों एनर्जी अपने अंदर भरती है और कैसे टीम को पॉजिटिव बना सकते हैं और वो एनर्जी कैसे फिर आपकी बॉडी के एक एक सेल को नरिश करती है। तो ब्रेन के लिए ज्ञान चाहिए, इम्यून सिस्टम के लिए पवित्रता चाहिए, लंग्स के लिए शांति चाहिए। जितना अधिक आप शांत होते हैं उतना आपके फेफड़ों में सांस गहरा और स्लो चलता है। जितना आप गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, आपका श्वास ऊपर ऊपर चलता है और फास्ट चलता है, शैलो एंड रैपिड। हमें साल गिन करके मिलते हैं, श्वास गिन करके मिलते हैं, लगभग एक मिनट में हम 14 सांस लेते हैं। मान लो 14 के हिसाब से मेरे पे 10 साल बाकी हैं। अगर मैं रोज में गुस्सा करूं, चिंता करूं, तो क्या होगा, मैं एक मिनट में 25 सांस लेने पड़ेंगे और 10 साल के सांस मेरे 6 साल में खत्म हो जाएंगे। 6 साल बाद मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर मैं अपने को आत्मा समय के परमात्मा को याद करूं, शांति की अनुभूति में रहूं, तो मेरे 8 सांस ही एक मिनट में चलेंगे, एक मिनट में सिर्फ 8 सांस। मेरे 10 साल के सांस 16 साल चलेंगे, 18 साल चलेंगे। तो इस तरह से आप योग से अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। प्यार का कनेक्शन हार्ट से है, खुशी का कनेक्शन पेट से, लीवर से और आंतों से है, हार्मोन्स का कनेक्शन थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियास से है, डायबिटीज से है, शक्तियों का कनेक्शन जोड़ों से है, गर्दन माना फ्लेक्सिबिलिटी, कमर माना बेंड करना, छोटी बात को बड़ा, बड़ी बात को छोटा कर देना। जो लोग छोटी बात को बड़ा कर देते हैं उनकी कमर बहुत जल्दी खराब हो जाती है। स्पेशली हमारी माताओं की तबीयत ज्यादा खराब क्यों होती है, कमर, क्योंकि छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर लेती हैं। 20 साल 30 साल बीतने के बाद वो बात को बार बार रिपीट करती रहती हैं, याद करती रहती हैं, कमर इसलिए जल्दी खराब होती है। तो आज से अगर अपन भी कमर ठीक करना चाहती हैं तो क्या करना पड़ेगा, पास्ट की बातों को भूल जाओ, बड़ी बात को छोटा कर दो तो आपकी कमर ठीक हो जाएगी, ठीक है। और फिर सातों एनर्जी मिलकर बॉडी टॉक्सिन्स को किडनी के द्वारा बाहर निकालती है। तो इस तरह से आत्मा सारे शरीर को नरिश करती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो है अगर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद करें 4 से 5, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये साइंस ने बताया है, रिसर्च ने बताया है कि अगर आप 4 से 5 के बीच में आधा घंटा आनंद की स्थिति में रह जाएं, आनंद की स्थिति, वो तभी पॉसिबल जब आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाए, वो मेडिटेशन के द्वारा संभव है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहते हैं। तो ये आधा घंटा आप आनंद की स्थिति में रह जाए तो आपके हाइपोथैलेमस से 9, पिट्यूटरी से 8 और पीनियल ग्लैंड से 1 हार्मोन, ये हार्मनी में निकल आएंगे और अगले 24 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, सिरदर्द, एसिडिटी, अस्थमा, कमर का दर्द या कोई बीमारी भी मन यतन की कम हो जाएगी। अगर आप ये 4 से 5 का समय मिस कर देते हैं मेडिटेशन, तो आपको हर बीमारी बढ़ जाएगी मन की और तन की। और आज बीमारी बढ़ने का कारण यही है। तो आप इसका अभ्यास, इसे यहां जो सिखाया जा रहा है, अमृत वेला अवश्य करें, ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। फिर 8 बजे तक आपके एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। अगर आप 8 बजे तक टीम को पॉजिटिव रखें, टीम माना स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, तो सबसे बड़ा आज साधन जो टीम को नेगेटिव करने का मोबाइल है। उठते ही आप मोबाइल यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं, अखबार यूज करते हैं, और तीनों में नेगेटिव टीम भरी होती है। तो 8 बजे तक मोबाइल, टेलीविजन और अखबार को ना देखें। 8 बजे तक सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखें। मैंने पिछले 28 साल में क्या किया, हालांकि मैं बहुत बिजी डॉक्टर रहा दिल्ली में, यहां पर आके भी बहुत बिजी रहा, किंतु मैंने कभी भी आज तक 28 साल में एक दिन भी, जो परमात्मा महावाक्य से मुरली कहते हैं, हम 7 से 8 वो अवश्य सुनते हैं, उसके बाद अपना कार्य शुरू करते हैं। तो परमात्मा मुरली सुनने से, महावाक्य सुनने से, मैंने देखा कि मैं एज ए डॉक्टर सारा दिन बहुत पीसफुल और लवफुल और हैप्पी रहता हूं, क्योंकि मेरा जो एड्रिनल कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस में निकलता है। जो लोग सुबह से ही नेगेटिव विचारों को मन में भरना शुरू करते हैं, विचार चीजें, नेगेटिव चीजें देखना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव बातें सुनना शुरू कर देते हैं, तो उनकी टीम, उनके कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा निकल आने से 8 बजे वो सारा दिन अपने आप जल्दी चिंता गुस्सा रहता है उनको। तो आप ये अभ्यास करके देखें, 8 बजे तक चुप रहें, जहां तक बहुत कम बोलें, टेलीविजन, अखबार और टीवी से बचें, और 8 बजे के बाद अपना मोबाइल ऑफ ऑन करें। टेलीविजन भी देखना है तो बाद में देखें, अखबार पढ़ना तो उसके बाद पढ़ें। 8 बजे तक आपका अपना समय है, और 7 से 8 मुरली को सुन लें, परमात्मा महावाक्य सुन लें, तो आपकी एनर्जी जो है, सातों एनर्जी जो यहां भर गई है, वो बॉडी के एक एक सेल में चली जाएंगी। अब बॉडी के बाहर कैसे निकले एनर्जी, ताकि आपके घर का वातावरण, वायुमंडल, आपके ऑफिस, स्कूल का वायुमंडल पॉजिटिव हो जाए, शांति प्यार खुशी से बढ़ जाए। तो आप सबसे पहली बात 45 मिनट सुबह सैर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वॉकिंग एंड टॉकिंग शुड नॉट बी मिक्स्ड। 45 मिनट आप सुबह सैर करें, सोल कॉन्शियस होके मैं कौन हूं ये समझ के चलें, सातों गुणों का अभ्यास करते, मैं आत्मा से 7 गुण सारी बॉडी में जा रहे हैं, परमात्मा से मुझ में आ रहे हैं, और मुझसे सारी बॉडी में जा रहे हैं, इस अभ्यास में आप चलें, तो सातों एनर्जी आपकी बॉडी में भर जाएंगे, एक एक कोशिका में भर जाएंगे, और ये 45 मिनट जैसे आपका मेडिटेशन हो जाएगा। किंतु हमेशा वॉकिंग करें, पहले टॉयलेट जाएं, नहा लें, नहाने के बाद फिर स्नान कर लें, पहले टॉयलेट जाने के बाद स्नान करके फिर वॉकिंग करें, और सूर्य उदय के साथ करें। अधिकतर लोग क्या करते, सुबह उठे और वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं अंधेरे में ही। अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, पेड़ पौधे सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस, सनराइज की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन बनाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, पेट साफ करने के बाद, नहाने के बाद ही सैर करें सूर्य उदय के साथ, और शूज पहन के सैर करें, चप्पल पहन के कभी सैर ना करें, बातें करते हुए कभी सैर ना करें। ये 45 मिनट आप सैर करके देखिए, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी बीमारी गायब, सिरदर्द गायब हो जाएगा। तीसरी बात, समय पर सो जाए, समय पर उठ जाए। नींद बहुत आवश्यक है, और सोने के पहले अपने आप को ऑडिट कर लें। ऑडिट का मतलब सारे दिन में देख लें कि आज मैंने दिन में सारा दिन कहां कहां मुझसे गलतियां हुई, क्या क्या मैंने गलत किया, कहां गुस्सा किया, कहां गलत देखा, कहां क्या गलत सुना, क्या गलत बोला, क्या गलत खाया, क्या गलत काम किए, और लिख दें एक कागज पे, और फिर भगवान के नाम, उसका भगवान का एक फैक्स नंबर है, हॉटलाइन नंबर है, मैं आपको दे देता हूं। उसका हॉटलाइन नंबर क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर आप 10 डायल करें तो स्टेट के बाहर जाते हैं, 20 डायल करें तो कंट्री के बाहर पहुंच जाते हैं, और 30 डायल करें तो क्या होता है, वर्ल्ड के बाहर पहुंच जाते हैं। तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और आज जो सारा दिन में बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0000000। तो आपकी सारी मन की जो टेंशन है आज सारे दिन की खत्म हो जाएगी, और वो करने के बाद आप सो जाइए। और मैं क्या करता हूं, मैं सोने के पहले मुरली दोबारा पढ़ लेता हूं ताकि मेरे विचार शुद्ध हो जाएं, और इतनी बढ़िया नींद आती है, बिस्तर पे, बेड पे सिर लगा, तकिए पे सिर लगा और नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। और सुबह 3:30 बजे हम टाइम अपने आप को देते, कभी अलार्म नहीं लगाते, 3:29 पे आंख खुल जाती है बिना अलार्म लगाए। तो ये आप करके देखिएगा, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जो दवाइयां बहुत आवश्यक हैं वो जरूर ले लें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की, जो भी आवश्यक है, आप देखेंगे धीरे दवाई भी छूट जाएंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे फिजिकल बॉडी के लिए, तो एनर्जी क्या होगी, आपकी बॉडी से निकल करके आपके शरीर के चारों तरफ फैलती जाएगी, तो आपका एक आभा मंडल बन जाएगा, इसको हम कहते हैं शील्ड, कवच बन जाएगा। तो जितना आप इस मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, उतना आपके आसपास वो एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी, और वो आभा मंडल आपका हर बीमारी से रक्षा करेगा, बैक्टीरिया से, वायरस से, किसी की बददुआओं से, कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति उससे, और उस वायुमंडल में जो भी आएगा वो भी शांत हो जाएगा, वो भी प्यार से आपसे बात करेगा। अगर भूकंप भी आएगा तो आपको तंग, आपके आपसे दूर रहकर चला जाएगा, आपका कमरा नहीं गिरेगा, दूसरे कमरे भले गिर जाएंगे, जिस कमरे में आप हैं वहां नहीं गिरेगा, और जो होगा वो भी बच जाएगा। अब देखिए, इन तीनों एनर्जी की हार्मनी से आप एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन सकते हैं। और यही राजयोग की डेफिनेशन है कि राजयोगा इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी थ्रू कनेक्शन विद द अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर एंजॉइंग एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी लाइफ। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करें, राजयोगा का मतलब यह है कि आप राजा बन जाएंगे, किसके, मन के, बुद्धि के, और अपनी हैबिट्स के, संस्कारों के, साथ साथ पांचों कर्मेंद्रियों के, और साथ साथ अपने बॉडी के हर अंग के, और आप सदा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। ये आपका हार्ट है, इसमें आर्टरीज होती हैं, ये कॉरोनरी आर्टरीज हैं, ऐसे दिखाई देती हैं, ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये एंडोथीलियम है। ये जो एंडोथीलियम जो देख रहे हैं आप, इसका अंदर की लाइनिंग है वेसल्स की, इसका एक बड़ा सिंपल सी बात है, आप अगर शांति प्यार खुशी में रहते हैं तो आपकी एंडोथीलियम नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस बनाती रहती है, कोलेस्ट्रॉल इसको चिपकता नहीं है, खून इसको चिपकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं तो ये गैस जल्दी बंद हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल अंदर एंटर करने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल अंदर एंटर करने से आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती जाती हैं। जब 70% ब्लॉक हो जाती है तो आपको छाती में दर्द होता है, और जब ये आर्टरी क्रैक हो जाती है गुस्से की वजह से, चिंता की वजह से, डर की वजह से, तो आपका आर्टरी क्रैक होने से क्लॉट बन जाता है, इससे हार्ट अटैक हो जाता है। और इसका इलाज बाईपास कराते हैं लोग, बाईपास ब्लॉक वहीं रहता है, उसको सिर्फ ब्लॉक को बाईपास कर देते हैं। तो ये जो हार्ट की अपनी आर्टरीज आपने ब्लॉक कर दी, आप तो आर्टरीज ब्लॉक करने में स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, ये तो आपने हार्ट की आर्टरी ब्लॉक करी, ये तो हाथ की आर्टरी और पैरों की जो वेन्स हैं वो तो आप बहुत जल्दी ब्लॉक करते हैं, इसलिए बाईपास सिर्फ टाइम पास है, बाईपास इज ओनली टाइम पास, इट डज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इसी तरह से एंजियोप्लास्टी है, ब्लॉक को आप एक बैलून डाल करके आप स्टेंट कर देते हैं कि तो जड़ का इलाज नहीं कर पाते हैं, इसलिए एवरेज टाइम दूसरी एंजियोप्लास्टी करने का 10 महीना है सिर्फ, एक एंजियोप्लास्टी कराइए 10 महीने में दूसरी एंजियोप्लास्टी तैयार हो जाएगी। ये सिर्फ ये इलाज एंजियोप्लास्टी बाईपास सिर्फ इसी तरह से, जैसे कि एक पेड़ को ऊपर से काट दिया, हवा लगने पर पानी मिलने पर वापस पेड़ हरा हो जाता है। और ये हमने एक रिसर्च की जो ग्लोबल हॉस्पिटल और DRDO के साथ में रिसर्च की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर की थी पिछले 16 साल पहले, और ये पेपर पब्लिश हुआ है अभी 2011 में, और पिछले 2 साल में ये पेपर वर्ल्ड में पहले टॉप 20 में आया था, 2 मिलियन रिसर्च हर साल पब्लिश होती है, उसमें ये पेपर हमारा वर्ल्ड की टॉप 20 में आया, और अभी ये वर्ल्ड के टॉप रैंक्ड है, फर्स्ट रैंक पे है। फर्स्ट रैंक का मतलब इट इज द मोस्ट साइटेड, मोस्ट विजिटेड एंड मोस्ट साइंटिफिक आर्टिकल इन द वर्ल्ड। और ये रिसर्च मैं आपको दिखाता हूं कैसे ब्लॉक लोगों खुल जाते हैं। मैं एक चीज सिर्फ दिखाना चाहूंगा आपको, आपकी आर्टरीज कैसे ब्लॉक होती हैं, जब आप जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, अपने मन की बातें शेयर नहीं करते हैं, अपने मन को वेंटिलेट नहीं करते हैं, अपनी टेंशन को घर में शेयर नहीं करते हैं, पत्नी से, पति से, बच्चों से, माँ बाप से, दोस्तों से, तो आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती है। इसलिए पहले जमाने में, आज से 20-30 साल पहले, ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर लिखा रहता था, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। तो जब आपका ऐसा स्वभाव होता है, बस मैं 5 मिनट पूरा करता हूं, तो आपके अंदर बिहेवियर खराब हो जाता है। आपका बिहेवियर क्या खराब होता है, उस टेंशन को दूर करने के लिए आप स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, ऐसा आदमी गलत खाना खाता है, गलत माना पराठा खाएगा, पकोड़ा खाएगा, समोसा खाएगा, मिठाई खाएगा, पूरी खाएगा, हलवा खाएगा, है ना, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, क्योंकि मन में खुशी नहीं है, खाने में खुशी ढूंढ रहा है। ऐसे आदमी को नींद नहीं आती है, समय पर नहीं सो पाता, समय पर उठ नहीं पाता, ऐसा आदमी सैर नहीं कर पाता, या तो सैर करता है या तो नहीं करता है, करता है तो गलत जगह जाके करता है, जिम में जाके करता है, और जिम में जाके जो सैर जो एक्सरसाइज करता है, जो 5 साल में हार्ट अटैक आने वाला हो 1 साल में आ जाता है, क्योंकि बिना एक्सम के करता है, बिना एक्लेमेटाइजेशन के करता है। और ऐसा आदमी अपने आप को नहीं बदलता है, डॉक्टर बदलता रहता है, अपने आप को नहीं बदलता है, डॉक्टर बदलता है। अगर कोई डॉक्टर कुछ कहे ना आप ये बदलो, कहता डॉक्टर साहब मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूं, आपको जो बदलना बदल दो, अगर आप मुझे आप नहीं बदल सकते तो मैं किसी और डॉक्टर के पास जाता हूं। और ऐसे आदमी की आर्टरीज जल्दी जल्दी ब्लॉक होती हैं, और फिर भी अगर आदमी अपने आप को ना बदले, अपने मन को ना बदले, अपने खान पान को ना बदले, सोने के समय को ना बदले, तो ऐसा आदमी को बार बार हार्ट अटैक होते रहते हैं। और ये देखिए, जब आप जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपका दिल ऐसा होता है, जब आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं आपका दिल ऐसा होता है। आप देख लीजिए अपना दिल, पसंद आया आपको, पसंद नहीं आया, तो इसको ठीक करते हैं लोग पिज्जा खा के, बर्गर खा के और आइसक्रीम खा के, ठीक होगा इससे क्या? कई लोग मछली खा के ठीक करना चाहते हैं, तो मछली से ठीक होगा क्या? मछली से भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मछली से ज्यादा तो हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमारी मेथी में प्रेजेंट होता है, सोयाबीन में प्रेजेंट होता है, सरसों के तेल में प्रेजेंट होता है, उसमें ज्यादा नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा हमारी सोयाबीन में प्रेजेंट है, मेथी में प्रेजेंट है। और जिम में कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जिम इज नॉट द राइट आंसर फॉर ट्रीटिंग हार्ट डिजीज और फॉर दैट मैटर एनी डिजीज। जिम में बीमारी ज्यादा बढ़ती है, ठीक नहीं होती है। ये हमने रिसर्च की अबू हेल्दी हार्ट ट्रायल, माउंट अबू ओपन हार्ट ट्रायल, और ये हमने, मैं आपको सिर्फ सीधी एंजियोग्राफी पे ले जाता हूं। इससे लोगों का साइकोलॉजी बदल गई, जल्दी चिंता गुस्सा का बिहेवियर बदल गया, उदासी बदल गई, और सब पेशेंट्स ने स्मोकिंग करना और शराब पीना छोड़ दिया। और ईईजी, जैसे हार्ट का ईसीजी होता है, सब ब्रेन का ईईजी होता है, तो 7 दिन के अंदर उनकी अल्फा रिदम पैदा हो गई, थीटा और डेल्टा रिदम पैदा हो गई। ये शांति की रिदम, शांति प्यार और खुशी की रिदम है, जो कि आप मेडिटेशन के द्वारा पैदा कर सकते हैं। हमारे अंदर एक दो तार होती हैं ब्रेन से, आप हाइपोथैलेमस से निकलती हैं, एक गर्म तार एक ठंडी तार। पहले दिन जब ये लोग आए थे हमारे पास, तो इनकी गर्म तार, लाल तार ज्यादा एक्टिव थी, ठंडी तार, हरी तार कम एक्टिव थी। 7 दिन में इनका बहुत अच्छा बैलेंस हो गया, और 1 साल पे तो एकदम बैलेंस हो गया, हार्मनी हो गई, और 2 साल पे आप देख रहे हैं बिल्कुल हार्मनी है। और जो टेंशन वाले हार्मोन्स कम हो गए, खुशी वाले हार्मोन्स बढ़ गए, विद इन ए वीक ये चेंज देखने में आया। और 8 बजे वाला हार्मोन, जिसको मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन, वो 7 दिन में काफी कम हो गया, जिससे कि आदमी सारा दिन शांति प्यार खुशी को एंजॉय कर सकता है। इंसुलिन हार्मोन, जो डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है, इसमें क्या हुआ, शुगर तो लोगों की कम हो गई, विद इन ए वीक कम हो गई, कई लोगों की इंसुलिन भी छूट गई। और सबसे बड़ा क्या बढ़िया फायदा हुआ कि 7 दिन में उनके इंसुलिन के लेवल्स भी कम हो गए, अर्थात थोड़ी इंसुलिन में ज्यादा शुगर कंट्रोल होने लगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो गई। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि लोगों की डायबिटीज ठीक हो जाती है इस बीमारी से, इस राजयोग मेडिटेशन से। और जो पेशेंट 50 कदम चल नहीं पाते थे, अब 3-3, 4-4 किलोमीटर चल सकते हैं, और लगभग 500-550% कैपेसिटी एक्सरसाइज करने की बढ़ गई। जो टैबलेट्स थी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, हार्ट डिजीज कम होती चली गई। और इसमें एक फायदा क्या हुआ, आए थे हार्ट डिजीज ठीक करने के लिए, किंतु उनकी 10 बीमारियां और ठीक हो गई, दमा भी ठीक हो गया, एक्जिमा भी ठीक हो गया, गर्दन का दर्द भी ठीक हो गया, माइग्रेन भी खत्म हो गया। मतलब ये जब आप ये प्रोग्राम करते हैं 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, तो बॉडी की हर कोशिका पे इसका असर पड़ता है। कोई भी रोग, बंद तन का रोग आपका ठीक हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड कम हो गया। और जिन पेशेंट्स ने ये प्रोग्राम को फॉलो किया, जिन्होंने नहीं फॉलो किया, इसमें देखें अगर 9 वर्सेस 38, इसमें 38 लोगों को हार्ट अटैक आया, बाईपास कराना पड़ा, उसमें सिर्फ 9 लोगों को तकलीफ हुई, और 93% पेशेंट्स के ब्लॉकेजेस खुल गए, 93% पेशेंट्स के ब्लॉकेजेस खुले। और एंजियोग्राम देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, 80% ब्लॉक है एक पेशेंट का, वो खुल गया पूरा का पूरा। ये देखिए, एक यहां पे 80% ब्लॉक है, वो खुल गया है, ये इतना लंबा ब्लॉक है वो खुल गया है, ये 100% ब्लॉक खुल गया है, ये 100% ब्लॉक खुल गया है, ये पेशेंट के मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, सारे खुल गए हैं, ये भी 2 ब्लॉक देख रहे हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, सारे खुल गए। ये देखिए, ये ब्लॉक खुल गया है। और इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया था, इसकी हार्ट की पंपिंग पावर 30% रह गई थी सिर्फ, अर्थात 2 बार इसको हार्ट अटैक आया, एंटीरियर वॉल और इंफीरियर वॉल का, तो हार्ट की पंपिंग नॉर्मल 60% होती है, और हार्ट अटैक आने के बाद 30% इजेक्शन फ्रैक्शन रह गई। और जब दोबारा हमने एंजियोग्राफी की, तो इसकी हार्ट की पंपिंग पावर 45% हो गई। जो स्टेम सेल थेरेपी से 5% बढ़ती है, इसमें बिना सिर्फ राजयोग मेडिटेशन से 15% बढ़ गई। इस पेशेंट का देखिए 80% ब्लॉक खुल गया, और ये अभी 20% इसकी पंपिंग पावर थी इस पेशेंट की, रिपीट करने पर ये देखिए 50% हो गई, ये 80% ब्लॉक खुल गया। और जिन पेशेंट्स ने इस प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया था, देखिए सिर्फ डाइट एक्सरसाइज फॉलो किया, उनके ब्लॉक्स बढ़ गए, सारे ब्लॉक्स बढ़ गए। क्योंकि ये देखने में आया, सिर्फ जीरो ऑयल डाइट खाने से या एक्सरसाइज करने से आपके ब्लॉक नहीं खुलेंगे, जब तक आप मन को परिवर्तन नहीं करेंगे। हर ब्लॉक के पीछे आपका मन का कारण है, ये हमने देखा है। आपकी एंजियोग्राफी देखिए, हमें पता लगता है आप क्या सोचते हैं, आपका सोचने का ढंग क्या है। हर ब्लॉक आपके मन के सोचने के ढंग से होता है, उसको आप परिवर्तन कर देंगे तो आपके ब्लॉक खुलेंगे, नहीं तो अदरवाइज ब्लॉक बढ़ते जाएंगे। ये पेशेंट देखिए, इसकी ब्लॉक एक 100% ब्लॉक है इसकी आर्टरी, रिपीट करने पर यह ब्लॉक पूरा खुल गया। एक्चुअली वीडियोग्राफ्स वीडियोज हैं, शायद आपकी ये दिखा नहीं रहा है ढंग से, बस ये हो गया, पूरा हो गया। अब लास्ट में टेक होम मैसेज क्या है, टेक होम मैसेज ये है, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर माना, सबसे पहले स्पिरिचुअल केयर, स्पिरिचुअल केयर माना कि आप सबसे पहले अपने अंदर यह सोचे कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं कभी मत बोलिए मैं गुस्से वाली आत्मा हूं, जल्दीबाजी वाला व्यक्ति हूं, मेरे को बहुत सेंसिटिव हूं, ऐसा कभी नहीं बोलिए। बल्कि बोलिए मैं नॉलेजफुल, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप सबसे प्यार करने वाली आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। इस बात को बढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे उठें, मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठ जाएं, आधा घंटा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें और आनंद की स्थिति का अनुभव करें, तो 18 हार्मोन्स आपके बैलेंस में निकल आएंगे और अगले 24 घंटे आप अच्छा महसूस करेंगे। फिर दूसरी बात, मेंटल केयर। सुबह उठने के बाद 4 बजे से लेकर 8 बजे तक चुप रहें, जितना हो सके चुप रहें, सिर्फ पॉजिटिव टीम को एंटरटेन करें और 7 से 8 परमात्मा के महावाक्य सुने, तो आपका एड्रिनल सर्ज, कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस में निकलेगा, तो जिससे कि आपकी सारी एनर्जी बॉडी के हर अंग में चली जाएगी। तीसरी बात, फिजिकल केयर। उसके लिए भोजन, शुद्ध सात्विक आहार, ऐसा भोजन जो आपके सात्विक गुणों को बढ़ाए, सातों गुणों को बढ़ाने वाला, फल सब्जी रोटी चपाती, मतलब रोटी है, सब्जी है, फल है, सलाद है, दूध है, ये ज्यादा मात्रा में सेवन करें। सुबह नाश्ता 8 से 9 के बीच में करें, लंच 1 से 2 के बीच में, डिनर 7 से 8 के बीच में। खाना चबा चबा के खाएं, शांति से खाएं, बोले नहीं खाना खाते समय, परमात्मा की याद में खाएं। यह है शुद्ध सात्विक भोजन। राजसिक भोजन क्या होता है? पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयां, ये आपको सुस्ती पैदा करते हैं। तामसिक भोजन क्या होता है? नॉनवेज, लहसुन प्याज और ये क्या होता है, अचार, ये तामसिक भोजन कहलाते हैं, जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं, चिंता पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो शुद्ध सात्विक भोजन करें, शुद्ध सात्विक सैर, समय पर सैर करें, सुबह पेट साफ करने के बाद नहा करके सूर्य उदय के साथ 45 मिनट सैर करें, मेडिटेशन करते हुए सैर करें, और सोने का समय 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं, और सोने के पहले अपने आप को ऑडिट कर लें, और जो थोड़ी दवाई है वो खा लें, थोड़ी देर में दवाई भी छूट जाएगी। इन तीनों तरह की केयर आप करेंगे, स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल केयर, तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, गाते रहेंगे और डांस करते रहेंगे। ओम शांति।